Namo Hare Rama
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Srila Prabhupada Prachar Kendra Surat mein Sravivar ke Sayankal Sandhya Vele Satsang mein aap sabka hardik swagat hai. आज श्रीमद् भागवत महापुराण के आठवें स्कंद के सोलहवें अध्याय का बीसवां श्लोक 8, 16, 20 के ऊपर सत्संग होगा, श्रवण वर्णन होगा. प्रसंग ये है, देवताओं की माता आदिति अपने पुत्र इंद्र और अन्य आदिति पुत्रों को अपने स्थान से अपने राज से अदृश्य देखकर, वहां नहीं देखकर बड़ी चिंतित थी अपने संतान के भविष्य के हित में. क्या हुआ था आदिति के इंद्रादि पुत्रों को? बलि महाराज ने भृगुवंशी ब्राह्मणियों के विश्वजीत यज्ञ के प्रभाव से देवताओं ने जब बलि महाराज की समुद्र समान सेना को देखा स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हुए, तो अपने गुरु बृहस्पति से पूछा क्या करना चाहिए. बृहस्पति ने कहा कि इस वक्त ब्राह्मणों के संरक्षण में बलि महाराज अजय है, उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए आप अदृश्य हो जाओ. तो सारे देवता अपना स्थान छोड़ के अदृश्य हो गए. पता नहीं कहां भटक रहे थे. मां आदिति बड़ी दुखी थी अपने संतान के लिए, तो उन्होंने अपने पति कश्यप को उनके पूछने के ऊपर कि आप क्यों दुखी हैं, तो अपने पुत्रों के न देखना अपने स्थान से च्युत स्थान से खलित हो गए हैं, गिर गए हैं, नहीं है अपने राज स्वर्ग में, तो मैं क्या करूं. कश्यप जी पहले तो मुस्कुराए के देखो कितना संसार में मोह है. ऋषि की पत्नी है फिर भी पुत्रों का मोह है, लेकिन स्वाभाविक है. तो उन्होंने एक श्लोक में उनको सलाह दी, उनको बताया कि आप क्या करो जिससे आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी. आते समय हमें भागवत खोला तो ये श्लोक निकला, हमको अच्छा इसलिए लगा कि प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अच्छा है. और सामान्य रूप से सबको संसार में कुछ संकट है ही, तो ये कश्यप जी के द्वारा आदिति को अपने पुत्रों का हित कैसे होगा, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये श्लोक बताया है. आप इसका पाठ कीजिए. उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूता गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्वः पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उप उपतिष्ठा स्वाहा पुरुषाम भगवन्तं जनार्दनम् सर्वभूत गुहावासम् वासुदेवं जगद्गुरुम्। कोई पाठ करेगा?
उपतिष्ठ स्व पुरुषम् भगवन्तं जनार्दनम्
सर्वभूत गुहावासम्
वासुदेवं जगद्गुरुम्।
उपतिष्ठं पुरुषं
भगवन्तं जनार्दनम्
सर्वभूत गुहावासम्
वासुदेवं जगद्गुरुम्।
उपतिष्ठस्व पुरुषम् भगवन्तं जनार्दनम् सर्वभूतगुहावासम् वासुदेवं जगद्गुरुम्। उपतिष्ठस्वपुरुषम् भगवन्तं जनार्दनम् सर्वभूतगुहावासम् वासुदेवं जगद्गुरुम्। उपतिष्ठस्व उप कहते हैं नजदीक जाने का, और उपतिष्ठस्व उसकी आराधना करो, पूजा करो, भगवान किसकी पूजा करो, जाओ और पूजा करो। उपतिष्ठस्व जाओ पूजा करो, किसकी पूजा करो? पुरुषम, परम पुरुष की पूजा करो। कैसे है? परम पुरुषम भागवतम जनार्दनम, उसको भगवान जनार्दन कहते हैं, जनार्दन की पूजा करो। कौन है जनार्दन? भगवान है, पुरुष है, आदि पुरुष है, भगवान है, जनार्दन है। कहाँ मिलेगा उसकी पूजा, कहाँ करने जाएं? तो कहते हैं सर्वभूत गुहावासम, सबके हृदय में जो रहते हैं। सर्वभूत मतलब सारे प्राणियों के, गुहा का मतलब हृदय, वासम का मतलब रहते हैं। वो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले सबके दिल में रहते हैं। तो कहीं पूजा करने जाना नहीं है, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठ के पूजा कर सकते हैं। ये कौन भगवान कैसे हैं भाई? पूजा किसी की करें, कोई परिचय हो उससे पूजा करें। वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण, वो जनार्दन श्री कृष्ण है, और वासुदेव का अर्थ है वसति सर्वत्र, जो सब जगह रहते हैं, और जगत गुरु है, वो सारे जगत के गुरु हैं। आप जगत में रहते हैं तो आपके भी गुरु हैं, आप उसकी पूजा करो। तो प्रायः इस श्लोक के अंदर भगवान के नामों का ही ज्यादा उल्लेख है। पुरुषम भागवतम जनार्दनम वासुदेवम जगत गुरुम सर्वगुहा सर्वभूत गुहा स्तर, ये सारे ही भगवान के नामों का ही विशेष रूप से वर्णन है। तो आदित्य को कश्यप जी कह रहे हैं, हे प्रिय आदित्य, क्या करो? भक्तिमयी सेवा करो। किसकी करो? परम पुरुष भगवान की करो, जो जगत गुरु है। और प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा है, वो सबके शत्रुओं को समाप्त कर सकता है। ये बात श्लोक में नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखी है। क्यों लिखी है? क्यों? आदित्य की इच्छा ये थी, मेरे पुत्रों को शत्रुओं ने भगाया है, तो शत्रुओं के ऊपर कैसे विजय प्राप्त हो कि मेरे पुत्र वापस आए। तो यहां प्रभुपाद जी उनके भाव को कहते हैं, वो भगवान जो जगत गुरु है, सबके शत्रुओं को दमन करने वाले हैं, वो सबके हृदय में रहते हैं। केवल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण वासुदेव वही शुभ आशीर्वाद दे सकते हैं। ये आशीर्वाद भी इसमें नहीं है, श्लोक में आशीर्वाद शब्द नहीं है, इसके बाद वाले श्लोक में शब्द है आशीर्वाद। तो क्या है कि धारावाहिक बोलते हैं तो आगे पीछे श्लोकों के अर्थों को इस श्लोक में प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है, इसके बाद वाले श्लोक को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि वो सबकी इच्छा पूरी करता है, सबको आशीर्वाद देता है। केवल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही मंगलमय आशीर्वाद हरेक को देते हैं, क्योंकि वो जगत के गुरु हैं। तो बाकी तो शब्दों का अर्थ ऐसे ही है, दो चीजें प्रभुपाद जी ने अनुवाद में ही तात्पर्य लिखा है, एक तो शत्रुओं को दमन करने वाले हैं और दूसरा मंगलमय आशीर्वाद देने वाले हैं। तो ये विधास्यति ते कामान, दूसरे इसके बाद वाले श्लोक में स मतलब वो वासुदेव वो जनार्दन विधास्यति सबकी इच्छाएं कामान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबको मंगलमय आशीर्वाद देते हैं। तो ये आने वाले श्लोक के भाव को प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है। और अब इस श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को इन शब्दों से संतुष्ट किया, शांत किया, जो अशांत थी। क्यों थी अशांत? के पुत्र उसके मिल नहीं रहे थे, राज को छोड़ के चले गए थे, बलि महाराज ने अवैध रूप से उनके राज के ऊपर कब्जा कर लिया था, राज को अपने अधीन कर लिया था। प्रभुपाद लिखते हैं, आदित्य ने तो अपने भौतिक पति को ऐसा प्रार्थना की, उसके सामने ही अपना प्रस्ताव रखा, यह अच्छा है, यह अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं, फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, लेकिन संसार में कोई भी भौतिक संबंधी कुछ लाभ दे नहीं सकता। अच्छा है, प्रार्थना कर ली, लेकिन फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, सही माना में असल में कहा जाए तो भौतिक संबंधों के द्वारा किसी का कुछ भला नहीं होता। भौतिक संबंध किसी का कुछ भला नहीं करते हैं, ऐसे एक लाइन में प्रभुपाद जी ने यह लिखा है। जैसे कहा जाए द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, सारे ही संबंधी वहां बैठे थे, कुछ भला तो नहीं कर सके, न तो राजा कर सका न पति कर सके, पांच पांच एक भी नहीं था, बड़े बड़े गुरुजन बैठे थे वो भी नहीं कर सके। तो इसका मतलब है, प्रभुपाद जी ने यह लिखा है तो शास्त्र की दृष्टि लिखा है कि संसार में अपने संबंधियों को जरूर कहना चाहिए कि हमारी ये समस्या है, लेकिन वो कुछ कर पाएंगे ये संभव नहीं है। तो फिर कश्यप का उदाहरण बड़ा अच्छा है, अगर कुछ अच्छा कभी किसी का होता भी है तो वो केवल भगवान के द्वारा होता, वासुदेव के द्वारा होता है। ये प्रभुपाद जी एक सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि संकट सबके ऊपर आते हैं, लेकिन संकट से बचाने वाला, संकट से छुड़ाने वाला केवल भगवान है, और संसार का कोई व्यक्ति छुड़ा नहीं सकता। कह सकते हैं लोगों को, लेकिन उनके बस में नहीं है संकट से छुड़ाना। अगर कोई भला कभी किसी का कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते। इसलिए कश्यप मुनि ने आदित्य को भगवान वासुदेव की भक्ति करने के लिए जो सबके हृदय में है सलाह दी, मशवरा ये दिया, परामर्श ये दिया। प्रभुपाद जी कश्यप एक प्रमाणिक गुरु के रूप में पति होते हुए भी अपनी पति पत्नी को भगवान के शरण में जाने को कहा, भगवान की भक्ति करने को कहा। वैसे कश्यप जी समर्थ पुरुष हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी को भगवान वासुदेव जो सबके हृदय में है उनके शरण लेने को, उसकी भक्ति करने को कहा। कैसे हैं वो वासुदेव जिसके पास भेजा? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो सबके मित्र हैं, भगवान सबके मित्र हैं। ये कहां से लिखा प्रभुपाद जी ने, सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान सबके शुभ चिंतक है। और फिर लिखा है जनार्दन, और जनार्दन का एक अर्थ प्रभुपाद ने लिखा है, जनार्दन कैसे हैं, क्योंकि वो अर्दन अरी अरी शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, शत्रुओं को नाश करने वाले। जन जनार्दन, भगवान जो शत्रुओं का नाश करते हैं। वैसे जनार्दन भगवान, वो शंख चक्र और गदा हाथों में कुछ ऐसे होती है तो उसका नाम जनार्दन होता है। आप लोग बहुत सारे दर्शन करने जब जगन्नाथपुरी से अलारनाथ जाते हैं तो अलारनाथ भगवान जनार्दन का स्वरूप है। उनके हाथ में जैसे चक्र शंख गदा पद्म है, वो जनार्दन के चिन्ह है। और उसको अलारनाथ इसलिए कहते हैं, वो अलावरों के नाथ थे। अलावर में दक्षिण भारत के जो महात्मा थे वो पूजते थे, इसलिए उसको अलारनाथ कहते हैं। लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के जब स्नान यात्रा के बाद दर्शन बंद होते थे तो वहां क्यों जाते थे? वो तो विष्णु मूर्ति है, चार हाथों वाली मूर्ति है। तो भगवान तो राधा भाव में है चैतन्य महाप्रभु, तो उधर क्यों जाते थे? वो असल में कृष्ण ही है, जो रासलीला से जब कृष्ण अदृश्य हो गए थे तो गोपियों के बीच में चार हाथ वाले रूप में खड़े हो गए थे। तो कृष्ण ही है जो चार हाथ वाले रूप में खड़े हो गए थे, और राधा रानी को देखते ही दो हाथ अपने आप गुम हो गए। तो असल में वो कृष्ण ही है, इसलिए महाप्रभु विशेष रूप से वहां रहते थे। वो मंदिर इतना अच्छा, उसके जीर्ण उद्धार के समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वहां महीनों भर रहे, और केवल रहे नहीं, मजदूर काम रोक के बीड़ी पीते थे तो बीड़ी भी अपने हाथ से उनको बना के देते थे ताकि टाइम खराब ना हो। तो ये वो जनार्दन शब्द के ऊपर आया कि जनार्दन शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, सबके हितैषी हैं। फिर प्रभुपाद जी वासुदेव शब्द की परिभाषा लिखते हैं, प्रकृति के तीन गुण है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। इन तीनों गुणों में सतोगुण अच्छा माना जाता है, भौतिक प्रकृति के गुणों में सतोगुण अच्छा है। लेकिन सतोगुण भी भौतिक प्रकृति में कभी कभी रजो और तमोगुण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन तीनों गुणों से ऊपर जो स्थिति है उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। क्या कहते हैं? विशुद्ध सत्व, विशेष शुद्ध सत्व। ये स्थिति प्राप्त होती है तो उसके लिए सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दितम, सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्व गुण में जब आदमी व्यक्ति स्थित होता है, व्यक्ति स्थित होता है का मतलब हम सबको जब किसी न किसी दिन इस जन्म में या कहीं और कभी किसी जन्म में अगर भगवान को प्राप्त करना है तो इस स्थिति में आना पड़ेगा, विशुद्ध सत्व में आना ही पड़ेगा। इसके बगैर भगवान का अनुभूति करना संभव नहीं है। भगवान की अनुभूति करने के लिए, भगवान को जानने के लिए, समझने के लिए विशुद्ध सत्व में आना पड़ता है। तो विशुद्ध सत्व की स्थिति को कहते हैं वासुदेव, और इसका अर्थ है कि उसके अंदर अभी कोई भौतिक गुणों का प्रभाव नहीं है। और जब कोई वासुदेव स्थिति को होता है तो उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, जैसे वासुदेव के हृदय में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य कैसे हुआ? भगवान अपि विश्व आत्मा भक्तानाम अभयंकर जो विश्व आत्मा भगवान है सबके हृदय में विराजमान है, जो भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, आविशेष मन अनंक दुमदुबी वासुदेव के मन में प्रवेश किया। तो वासुदेव की स्थिति में जब हम आएंगे, कोई भक्त आएगा तो उसके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वासुदेव स्थिति पे आना, ये ऐसी स्थिति है जब भगवान की अनुभूति हो सकती है। ये हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता है, वासुदेव स्थिति में पहुंचना हमारी आध्यात्मिक आवश्यकता है, हमको इस स्थिति में पहुंचना है, ऐसे प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं। ये स्पिरिचुअल नेसेसिटी है, ये हमारी आवश्यकता है, इस स्थिति में हमको पहुंचना है। फिर प्रभुपाद जी एकदम लिखते हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसी स्थिति को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। वासुदेव स्थिति अगर किसी ने वासुदेव स्थिति को प्राप्त किया तो वो बहुत बड़ा महान है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं सर्वभूत गुहा स्थ, सबके हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं उसको परमात्मा कहते हैं। वो परमात्मा सबके हृदय में है, ये भगवत गीता में सिद्ध हुआ है। अब यहां प्रभुपाद जी कौन सा श्लोक लिख रहे हैं, और वैसे आप कौन से श्लोक जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में है भगवत गीता में? सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं हूं। और यहां प्रभुपाद ने एक और श्लोक लिख दिया, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये नमाम उपयान्ति ते। इसका मतलब है कि जब हम भगवान की प्रेम से भक्ति करते हैं तो भगवान हमको अंदर से बुद्धि योग देते हैं, तो वो भी तो हृदय में बैठे हुए वही भगवान है ना। तो यहां परमात्मा सबके हृदय में प्रभुपाद जी ने ये श्लोक मुख्य रूप से लिखा है, और ये श्लोक इसलिए लिखा है कि भगवान हृदय से हमको यो बुद्धि देते हैं जिससे हम भगवान को समझ सके अथवा भगवान की अनुभूति कर सके। दूसरा श्लोक लिखा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ये कहां का श्लोक है? 18 का, ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यंत्र यंत्र रूढ़ानि मायया। उसके बाद एक श्लोक और लिखा है भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। तो सारे ही महात्मा जानते हैं कि मैं सब यज्ञों का भोक्ता हूं, सब तपस्या का भोक्ता हूं, सबका सुहृद हूं, इसलिए वो शांति को प्राप्त करते हैं। अब दो शब्दों की परिभाषा अभी तक हुई, एक तो सर्व भूत गुहा स्थ परमात्मा, और दूसरी वासुदेव शब्द की परिभाषा हुई। अभी तक दो शब्दों की परिभाषा हुई, वासुदेव की स्थिति, हमको वासुदेव स्थिति में कैसे पहुंचना है, ये हमारा पूरे जीवन का साधन और लक्ष्य है, यही प्राप्त करेंगे तब हमारी भक्ति की परिपूर्ण पक्व अवस्था होगी, इससे पहले कच्ची अवस्था है। और परमात्मा सबके हृदय में है। अब प्रभुपाद जी कह रहे जब भी कोई संकट में हो, जब भी कोई संकट में हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो, कोई चिंता हो, तो फिर भगवान वासुदेव कृष्ण का के चरणों का शरण लेना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं, क्योंकि संकट सबको आते हैं, मुश्किल सबको आती है, परेशानी सबको आती है, तो ऐसी स्थिति में इधर उधर भटकने के बजाय भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान के चरणों का शरण लेना चाहिए, श्री कृष्ण वासुदेव के चरणों का शरण लेना चाहिए। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे, भगवान हमको बुद्धि देंगे जिससे हम सारी मुश्किलात सारे संकटों को पार करके भगवान को ही प्राप्त कर लेंगे, भगवान के धाम को ही प्राप्त कर लेंगे। और किसी का शरण लेंगे तो मुश्किल से छुड़ाएगा, लेकिन वापस इस संसार से मुक्त नहीं करेगा। लेकिन भगवान का शरण लेंगे तो मुश्किल से भी छुड़ाएगा और संसार से भी मुक्त करेगा। तो कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट हो, भगवान का शरण लेना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए। ये शरण शब्द बहुत बड़ा मुख्य है, भगवान का शरण लेना, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर होना, कैसी भी परिस्थिति हो भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी आदित्य को भगवान के चरणों का, कृष्ण के, वासुदेव के चरणों के शरण लेने का आदेश किया जिससे उसके सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, आसानी से वो मुश्किल से निकल जाए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए कश्यप जी प्रमाणिक गुरु हैं, प्रमाणिक गुरु है, क्योंकि प्रमाणिक गुरु का मुख्य काम है भक्त को कृष्ण की सेवा में लगाना। फिर एकदम प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अपने आप को मूर्ख की तरह ऐसे नहीं कहा कि मैं भी भगवान के समान हूं, मैं आपको सलाह देता हूं, ऐसे नहीं बोला। उन्होंने कहा भगवान का शरण लो। ध्रुव महाराज दुखी होके अपनी मां सुनीति के पास गया तो सुनीति मां ने कहा भगवान का शरण लो। इसलिए प्रभुपाद ने वहां लिखा है कि सुनीति गुरु के स्थान के ऊपर काम कर रही है, लेकिन है तो ध्रुव महाराज के लिए गुरु के समान है, क्योंकि उसने जो मार्गदर्शन किया वो गुरु को करना चाहिए। और यहां कश्यप जी कहते हैं आप भगवान का शरण लो, तो ये प्रमाणिक गुरु है। मूर्खता करके अपने आप को भगवान की जगह के खड़ा नहीं किया, ये कश्यप जी का प्रमाणिक गुरु का प्रमाण है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अपने आश्रितों को, अपने शिष्यों को भगवान वासुदेव का शरण लेने की शिक्षा दे, वो ही सही माना में प्रमाणिक गुरु है। अब प्रमाणिक गुरु कौन है? जो अपने आश्रितों को, भक्तों को भगवान वासुदेव कृष्ण की, जनार्दन की शरण लेने के लिए शिक्षा दे। अब प्रभुपाद जी जगत गुरु की परिभाषा कर रहे हैं। जगत गुरु बहुत मुख्य शब्द है यहां। अपने आप को कश्यप ने जगत गुरु नहीं कहा, जबकि वो जगत गुरु हैं। ये सारे जितनी प्रजा है कश्यप की प्रजा है, कश्यप उनका पिता है, तो वैसे भी वो गुरु है। कश्यप जगत गुरु होते हुए भी अपने आप को जगत गुरु नहीं मानता है। कश्यप क्यों जगत गुरु है? प्रभुपाद जी लिखते, क्योंकि वो भगवान कृष्ण का ही प्रचार कर रहा है, इसलिए जगत गुरु है। जगत गुरु का प्रचार कर रहा है इसलिए वो जगत गुरु का अधिकारी है, लेकिन अपने आप को जगत गुरु नहीं मानता। कौन है जगत गुरु? वासुदेव इस जगत गुरु, इस श्लोक में लिखा है वासुदेवम जगत गुरु। और दूसरा कौन सा श्लोक है जहां जगत गुरु भगवान को कहा गया है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। आगे क्या है? कंसम चाणोर मर्दनम वासुदेव सुतम देवम कंस चाणोर मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्ण जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को यहां कश्यप जगत गुरु कह रहा है, तो वो जगत गुरु भगवान है। जो भगवत गीता की शिक्षा, यथारूप में लोगों को देते हैं वो प्रमाणिक गुरु है, वो वासुदेव जगत गुरु के समान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो भगवत गीता की शिक्षा मतलब कृष्ण की शिक्षा जो दूसरों को देता है असल में वो जगत गुरु का कार्य कर रहा है, ये जगत गुरु का कार्य है। लेकिन जब भगवान जब कोई गीता की शिक्षा भगवान के अनुसार नहीं देता है और अपने आप को जगत गुरु कहता है वो केवल जनता को धोखा दे रहा है। बहुत सारे जगत गुरु बने हुए हैं और जो असली जगत गुरु है उसको उसको नाम निशान तक उन्होंने लेना ही नहीं। तो कश्यप जी भगवान को जगत गुरु कहते हैं कि उसी के शरण में जाओ जो वो आपकी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो कृष्ण की शिक्षाओं को कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में प्रचारित करे वो जगत गुरु है, उसको जगत गुरु मानना चाहिए। लेकिन जो अपना ही मनमाना कुछ सिद्धांत बताए और अपने आप को झूठा जगत गुरु कहे उसको नहीं मानना चाहिए। तो ये आज के श्लोक में कश्यप मुनि की अपनी पत्नी को शिक्षा, पुत्रों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, उनको पुनः सुखी करने के लिए प्रार्थना की गई और कश्यप जी ने अपनी पत्नी को भगवान की आराधना करना, भगवान कृष्ण वासुदेव का शरण लेना उसका लिए कहा और कहा कि वही आपकी सब समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इससे मुख्य रूप से हमको सीखने को क्या मिलता है, चाहे हमारे घर है, बेटे की समस्या है या परिवार की समस्या है या कैसी भी समस्या है, हर हाल में हमको केवल भगवान के शरण में ही जाना चाहिए। और भगवान के शरण में जाने के लिए कहीं कोई दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। और भगवान के शरण में जाने का भी परिभाषा ये है कि हम भगवान को प्रार्थना करें और भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। लेकिन हमारी हृदय की शुद्धि कितनी है उतना ही हम उनके मार्गदर्शन को समझ सकते हैं। आप में से कभी किसी की ऐसी अनुभूति है कि ऐसी परिस्थिति में आपने भगवान को प्रार्थना की हो और भगवान आपके हृदय में बैठे आपका मार्गदर्शन करें, भगवान की शरणागति की बात? कल मैं सुन रहा था 15वें अध्याय भगवद गीता के अंतर्गत, वहां भी शरणागति शब्द एक श्लोक में 4 बार प्रभुपाद ने लिखा है, शरण लेना शरण लेना शरण लेना। तो पूरन चंद महाराज पढ़ा रहे थे किसी समय में, वो अपने जीवन की अनुभूति बता रहे थे कि मास्को से मेरे को कहीं सेमिनार देने के लिए रशिया के दूसरे भाग में, जो रशिया से अलग हो गया था, वहां ट्रेन में चढ़ाने के लिए एक ब्रह्मचारी आया, मेरा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट से टिकट लिया, टिकट मेरे को दिया और वो छोड़ के चला गया और मुझे कहा कि रास्ते में जब रशिया का बॉर्डर क्रॉस होगा तो एक स्टेशन आएगी, कुछ वहां के पुलिस वाले आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, फिर आपको आगे जाने देंगे। तो मैंने कहा सोने से पहले मैं अपने डॉक्यूमेंट ठीक करके रखूं। मैंने सारी बैग ढूंढी, सब कागज ढूंढे, इधर उधर देखा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। अब ऐसी परिस्थिति है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मेरे को रशियन आती नहीं है और वो उधर पूछेंगे पासपोर्ट नहीं होगा तो जेल में डालेंगे, और रशिया की जेल कैसी होगी, ठंडी होगी, चूहे होंगे, क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे संकट से बचाओ। फिर मैंने कहा ये प्रार्थना तो ठीक नहीं है, भगवान मैं आपके शरण में हूं, आप जो मेरे लिए अच्छा है वो करो, जो मेरे लिए अच्छा है। अब जैसी परिस्थिति है, मेरे को याद आया तब तक कि मैंने पासपोर्ट उसको दिया था, उसने मुझे वापस नहीं दिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। अब नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन भगवान की प्रार्थना करने से मैंने कहा अब जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा। अब एक स्टेशन पे ऊपर ट्रेन रुकी और बाहर से आवाज भी आने लगी, कोई आ रहा है, और मेरा दरवाजा खड़खड़ाया। मैंने कहा अब आ गए, अब पासपोर्ट तो है नहीं, जेल में जाना ही पड़ेगा, पता नहीं मेरी बैग उठाने देंगे कि नहीं उठाने देंगे। मैंने अपनी एक हाथ बैग में रखा और एक हाथ से दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो मैंने दो ब्रह्मचारी बाहर देखे, और ये दो ब्रह्मचारी देखे, उन्होंने मुझे प्रणाम किया और कहा आप पूर्णचंद जी हैं महाराज? हाँ। हमको मास्को के वाइस प्रेसिडेंट ने फोन किया था कि आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, आगे जाएंगे तो वो आपको जेल में डाल देंगे, आप उतरिए मंदिर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। तो उस स्टेशन से पहले बॉर्डर की वो उसको लेके गए, बोला मेरे को लेके गए। दूसरे दिन मेरा पासपोर्ट कोरियर में आया, फिर मैं आगे गया। तो अब वो कहते हैं कि ऐसे कई परिस्थितियां जीवन में आती हैं जब वो परेशान होने के बजाय भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, तो भगवान कैसे न कैसे उसका रास्ता निकालते हैं। वो दूसरी शरणागति की अनुभूति बता रहे थे, प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने पूर्णचंद जी महाराज जी कह रहे थे, मैं पढ़ा रहा था भक्ति शास्त्री, तो इंग्लैंड में एक माता जी ने हमको कहा कि प्रभुपाद जी ने हमको कहा कि आप फार्म कम्युनिटी में रहिए, कहीं खेती बाड़ी कीजिए। और हम पति पत्नी और छोटा बेटी थी हमारे को 4 साल की, हमने कहा ठीक है प्रभुपाद जी कहते हैं तो करना चाहिए। और तब हमको पता लगा कि अहमदाबाद के पास किसी ने जमीन दी है फार्म के लिए, अभी जो अहमदाबाद के पास कटवाड़ा वाली जमीन है। बोला हम ऐसे ही, हमारे पास इतने पैसे थे ट्रेन का टिकट लें, वो भी सबसे हल्का टिकट 3rd क्लास वाला, हम अहमदाबाद पहुंचे। पूछते पूछते फार्म में गए तो फार्म में देखा कुछ नहीं, एक दीवार है पुराने गिरे हुए, कोई बिल्डिंग थी कोई घर था उसका दीवार टूटा हुआ और कुछ नहीं, हमने सामान उधर ही रखा, न छत थी न कुछ था। सुबह हम निकल के शहर में जाते, हरिनाम कीर्तन करते, और कुछ लोग दाल चावल कुछ दे देते, फल रुपया पैसा कोई दे देते, वो ले आते, शाम को पकाते खाते। हमारे पास गोपाल जी था, उसकी आरती करते। तो गांव वाले आस्ते आस्ते आरती में शाम को आने लगे, अरे अंग्रेज हैं, गोरे हैं, कृष्ण की आरती कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो रोज हम जाते थे, ऐसे हमारा निर्वाह हो रहा था। एक दिन आकाश में बादल आए, भारी बारिश होने लगी। पत्नी बोली अब क्या करेंगे, कहाँ जाएं, छत तो है नहीं। बोला कीर्तन करेंगे और क्या करेंगे, लाओ खड़ताल, निकालो खड़ताल, कीर्तन करें। थोड़ी देर हमने कहा भीग रहे हैं, बोला कीर्तन करो, जोर जोर से कीर्तन करने लगे और कीर्तन किया, भीग गए, सब कुछ हो गया। दूसरे दिन सुबह जाने के समय कठवाड़ा में हमने अभी देखा है, अभी रोड बन गए, नहीं तो दूध लाने के लिए गाड़ी नहीं चल सकती, इतना मिट्टी, वो घुटने भर कीचड़ के अंदर से होके हम चले गए। शहर गए, वापस आए, 2-3 दिन बाद कीचड़ सूख गई, हम बैठे थे कीर्तन कर रहे थे और क्या करें, रोज थोड़ा बहुत लाते थे खाते थे, भगवान के ऊपर निर्भर थे पूरे। एक दिन एक आदमी ट्रैक्टर चला के आया, थ्री पीस पैंट और टाई बंधी हुआ, आश्चर्य लगा हमारे को ऐसे देखा। बोला लोग यहाँ कहते हैं कि विदेशी हैं और गोपाल की आरती करते हैं, आप करते हो? हरे कृष्णा, हाँ हम करते हैं। ऐसे करके ट्रैक्टर मोड़ के चला गया, चला गया। दूसरे दिन वो सुबह ट्रैक्टर पे आया, 3 ट्रक साथ में लाया और सीमेंट लाया, सब सामान लाया, एक घर बनाया हमको, सब खाने का सारा सामान लाया, पूरा किचन बना के भर के दिया, क्या अब आप यहाँ रहो और भजन करो। हम बैठ गए, उस कुछ नहीं किया, वो एक आदमी कैसे आया, बाद में लगा कि बहुत धनी था, कि इस जीवन का अनुभव प्रभुपाद के भक्तों का, इस जन्म का अनुभव है कि भगवान का पूर्ण शरण लेके बैठ गए। तो वो आदमी कोई बड़ा बिजनेसमैन था, उस इतना प्रभावित हो गया उसके भगवान के ऊपर विश्वास करने के ऊपर, भगवान का शरण लेने के ऊपर, गुरु की आज्ञा का पालन करने के ऊपर, कि वो वहां बैठ गए तो उस बेचारे ने आया, घर भी बना के दिया उनको, खाने का सामान सामग्री सब ला के दिया, बस आप बैठ के यहां भजन करो। तो ऐसे जीवन में परिस्थिति कभी भी कैसी आए, तो ये बहुत बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि भगवान का शरण लेना चाहिए। ऐसे भागवत के अंदर दशम स्कंद में वासुदेव नंद बाबा को कह रहे हैं कि आप जल्दी वापस गोकुल चले जाओ, क्योंकि वहां उत्पाद होने वाले हैं, क्योंकि कंस ने पहले ही बच्चों को मारने के लिए अपने असुरों को आदेश दे दिया है। तो वासुदेव समझ रहे थे कि हमारे बच्चों को वहां संकट है, आप जल्दी जाओ। तो नंद बाबा ने सर्वभूत गुहा स्थित भगवान जो सबके हृदय में, उसका शरण लिया। वह लिखा है नंद बाबा ने भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है उसका शरण लिया। तो ऐसा हम सबको एक बात आज समझ में आनी चाहिए कि परिस्थितियां हमेशा हमारे ऊपर एक जैसी नहीं रहती हैं, संकट आते रहते हैं, उस वक्त भगवान का शरण लेना चाहिए। इसके आगे वाले श्लोक में प्रभुपाद ने लिखा है कि तीन प्रकार के लोग होते हैं। एक को कोई संसार की कामना नहीं है, वो मुक्ति चाहता है, वो मुक्ति कामी है। एक को संसार के सारे भोग चाहिए, वो सर्व कामी है। और एक को कोई इच्छा नहीं है, केवल भगवान की भक्ति करनी है। ये तीनों, चाहे सब इच्छाएं हो, चाहे कोई इच्छाएं नहीं हो, चाहे मुक्ति की इच्छा हो, लेकिन जाना चाहिए भगवान के पास, करनी चाहिए भगवान की भक्ति, लेना चाहिए भगवान का शरण। और भगवान के शरण का पूरा फल कब होगा? जब हम वासुदेव स्थिति को प्राप्त करेंगे। और वासुदेव स्थिति को प्राप्त करने के लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा। सबसे मुख्य है भक्तों के संग में भक्ति करना। और भक्ति होती है शरीर से, इंद्रियों से, मन से और वाणी से। ये भक्ति का साधन, कैसे भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति की मूर्तिमान रूप है यशोदा मैया। जब वो दही का मंथन कर रही है, शरीर से मंथन कर रही है, मन से चिंतन कर रही है, वाणी से भगवान श्री कृष्ण का गुणगान गा रही है, इसको कहते हैं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप। तो इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, मन से भगवान का चिंतन करना है, और वाणी से भगवान का गुणगान करना है, कीर्तन करना है। तो भक्ति इन तीनों चीजों से होती है। और ये तीन चीजें भी सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। सकारात्मक इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों है इनकी, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो भक्ति क्या है? लिखा है कि उसकी भक्ति करो। किसकी? वासुदेव की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। लेकिन भक्ति करें कैसे? तो हमारे इंद्रियों से, मन से और वाणी से भगवान की भक्ति होती है। साधन भक्ति जो है ये होती ही शरीर से, मन से और वाणी से। भक्ति भगवान की, भगवान का शरण लेना। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति की बेसिक प्रिंसिपल भक्ति का क्या है? आज सुबह के श्लोक में के तात्पर्य में ये एक लाइन है, हमने डिस्कस नहीं किया था, ये लाइन उसमें छोड़ी थी। भक्ति का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? सुबह किसी ने पढ़ा है ऊर्ध्व मूल अधिशाख का पूरा तात्पर्य? पूरा तात्पर्य अगर पढ़ा है तो दूसरे परिच्छेद में है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिवोशनल सर्विस इज। बेसिक प्रिंसिपल का मतलब मूल सिद्धांत भक्ति का है, दो चीजें हैं, एक को छोड़ना है, एक को जोड़ना है।
विच्छेद करना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना।
जो संबंध इस वक्त संसार के साथ है उसको तोड़ना है और वही संबंध भगवान के साथ जोड़ना है। ये भक्ति का प्रिंसिपल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आधा काम कर रहे हैं। संसार वाला संबंध तोड़ नहीं रहे हैं, भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए जुड़ नहीं रहे। बेसिक प्रिंसिपल में दो, एक कहीं से तोड़ना है, कहीं से जोड़ना है। तो भौतिक भोग से संबंध तोड़ना है और भगवान की सेवा में, भाई भोग किससे करेंगे, इंद्रियों से करेंगे ना। तो इंद्रियों से भोग करने के बजाय इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी। जो सुबह क्लास में आते हैं ये लाइन जाके किताब में आज देख लेना, मूल सिद्धांत भक्ति का है, भौतिक जगत से संबंध को तोड़ना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो अब ये बहुत भारी लग रहा है कि संसार के साथ संबंध तोड़ना का मतलब क्या, हाँ? संसार में रहते हैं तो संसार का भी, कश्यप जी भी अपनी पत्नी को रास्ता तो बता ही रहा है। संसार के साथ संबंध तोड़ने का मतलब संसार के ऊपर निर्भर नहीं रहना, भगवान के ऊपर निर्भर रहना। संबंध तो नहीं तोड़ा कश्यप जी ने, अपनी पत्नी से संबंध तोड़ा तो नहीं है, लेकिन उसको भगवान से जोड़ा है। भगवान से जोड़ना, उनको भगवान से जोड़ना आपका काम है, बाकी संसार से संबंध उसी मात्रा में आस्ते आस्ते कम होंगे जितनी मात्रा में हम भगवान से जुड़ते जाएंगे, रेसिप्रोकल होगा। जितना हम भगवान से जुड़ेंगे उतना संसार के भोगों से हमारा मन उठता जाएगा। जो भक्त थोड़े पक्के हो गए हैं उनको अब ऐसे अच्छा नहीं लगता है कहीं जाना भी, कहीं खाने जाना के घूमने जाना, उनमें कोई उसी रुचि नहीं रह गई। प्रभुपाद ने इसके दूसरा जो श्लोक है, इसके बाद वाला श्लोक है, उसके तात्पर्य में, अच्छा एक तात्पर्य बहुत अच्छा है, थोड़े दिन पहले हम पूना में प्रचेताओं के प्रसंग के ऊपर सत्संग कर रहे थे, तो वहां भगवान इच्छाएं पूरी करते हैं, फिर वहां बड़ा अच्छा है एक तात्पर्य दिखा था। जो भक्त पक्के हैं उनको भगवान संसार का सारा वैभव देते हैं। जो भक्त पक्के हैं उनको भगवान संसार का सारा वैभव देते हैं। ये जानते हैं कि ये भोग नहीं करेगा, सेवा में लगाएगा। जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने इतना सारा पूरी विश्व के अंदर वैभव दे दिया, और दूसरी लाइन में लिखा है जो भक्त कच्चे हैं उनसे भगवान जो कुछ है वो भी छीन लेते हैं। कच्चों से छीन लेते हैं, पक्कों को दे देते हैं, तो पक्का बनना चाहिए ना, कच्चा काय के लिए रहे, तो पक्का बन जाओ तो बहुत कुछ, फिर तो किसी चीज की कमी नहीं है। पक्के को भगवान दे देते हैं और कच्चे से छीन लेते हैं, क्योंकि कच्चा उसको भोग में लगाएगा। और दूसरे आज के इसके आगे वाले श्लोक के तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखी है, लिखा है कि वैसे भगवान इच्छा सबकी पूरी करते ही हैं, जो उसके पास जाए उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन कभी कभी भगवान इच्छा जानबूझ के नहीं भी पूरी करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक प्रभुपाद जी उद्धृत करते हैं, कृष्ण कहे अम्मी भजे, कृष्ण कहता है नाम मेरा ले रहा है, अरे कृष्ण जप रहा है, आ मेरे पास रहा है, मांगे विषय सुख, और कहता है मुझे दुनिया का सुख दो, अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ा मूर्ख, मैं अमृत दे रहा हूं वो कहता है विष दो, ये तो मूर्ख है, वो मूर्ख है। फिर कृष्ण कहता है अमी विज्ञ, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, मैं तो जानता हूं ना, मैं तो जानता हूं अमी विज्ञ ए मूर्खे विषय केन दीवा, इस मूर्ख को विषय कैसे दूंगा, इसको क्यों मैं जहर दूं, आया है मेरे पास, मेरे पास अमृत का खजाना है और ये जहर मांग रहा है मूर्ख, तो ये मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना, तो इस मूर्ख को मैं जहर क्यों दूंगा। स्वचरणामृत दिया विषय भुलाए बा, मैं अपना चरणामृत दूंगा और इसके विषय को इसको भुला दूंगा। ये कृष्ण किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो फिर उसकी मूर्खता को देख के उसके ऊपर कृपा करके उसको अमृत देते हैं, उसको विषयों में नहीं फंसने देते। तो कैसी भी परिस्थिति हो भगवान का शरण लेना सीखना चाहिए। और ये आप देखेंगे तो हमारी रोज ऐसी परिस्थिति हमारे ऊपर आती है, आए दिन कोई ना कोई समस्या रहती है, तो ये हमको एक प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए, भगवान का शरण लेके देखना चाहिए। देखना चाहिए का मतलब है निर्भर होना चाहिए भगवान के ऊपर, फिर देखें कि कैसे भगवान चमत्कार दिखाते हैं। और ऐसे कई चमत्कार भगवान दिखाते हैं, उसकी अनुभूति आपको जब होगी तब आपका भक्ति में दृढ़ विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो ये सुनी सुनाई बातें हैं, थोड़े दिन कान में रहेंगी फिर नहीं चलेंगी, लेकिन आपकी अपनी अनुभूति जब होगी कि हमारे जीवन में भगवान के ऊपर हमने शरण लिया और भगवान ने हमारे जीवन में कितना कैसी समस्याओं को कैसे उबार दिया पता भी नहीं लगा, तो ऐसा ये अनुभूति करना चाहिए। कैसे भगवान का प्रार्थना करनी चाहिए परिस्थिति में, भगवान हम अपने कर्मों से कैसे भी इसमें पड़ गए हैं, आप हमारे हृदय में बैठे हैं, आप इसको जानते हैं, जिसमें हमारा भला है वो आप कीजिए, हम आपको न भूलें, ये हमारे ऊपर कृपा कीजिए, ये परिस्थिति हमको आपका विस्मृति न करा दे। और जो हमारे कर्मों का फल है, हमारे कर्मों का भोगना है हमको, आप कृपा करें सहने की शक्ति देना। तो भगवान हमने हमारे मन की बात को जब समझेंगे कि शुद्ध हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं तो समस्या का समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। और ऐसे मैं तो दो ही कथाएं बताई, ऐसे हजारों कथाएं भक्तों के जीवन की है जिन्होंने भगवान का शरण लेके देखा, वो तो बहुत दूर की बात नहीं है, यही 50 सालों के अंदर कई कृष्ण भावना अमृत के भक्तों का जीवन का ऐसा अनुभव है कि कई संकटों के अंदर उन्होंने भगवान का शरण लेके देखा और भगवान हृदय में बैठे हुए उनके भाव को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से करते रहे, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा। तो आज के श्लोक से दो बातें हैं, एक हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट हमको क्या करनी है, वासुदेव स्थिति को प्राप्त करना है, तीनों गुणों से ऊपर जाना है तभी भगवान की अनुभूति होगी, और उसके लिए हमारे को समय समय के ऊपर संकट में भगवान का शरण लेना चाहिए ताकि हमारा हृदय शुद्ध होता रहे और हमारा विश्वास दृढ़ होता जाए, तो फिर हमारी अनुभूति इस जीवन में होने लगेगी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
हमारे जीवन का अनुभव कौन सा बताएं, पता नहीं, रोज के नए अनुभव हैं। कृष्ण 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 हरे कृष्ण, सब अनुभूतियां अपने का थोड़ा चिंतन करके देखो कि भगवान कैसे परिस्थितियों में डालता है और कैसे परिस्थितियों से निकालते हैं। अब इस तत्काल तो कोई नहीं आ रही है ऐसे सामने, लेकिन होते ऐसे बहुत से चमत्कार होते रहते हैं भगवान की कृपा से। हाँ जी,
जैसे आपने बताया जिस समय मैंने प्रश्न था कि जैसे कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति होती, वो तो एक बहुत अच्छे घर से थी, मतलब दक्ष महाराज की पुत्री थी, ब्रह्मा जी की पोती है वो थी, और इतनी अच्छी स्वीकृति होती थी कि वो कश्यप ऋषि की पत्नी थी और इतनी सेवा भी करती थी, तो भगवान की शरण में ही थी ना। और दूसरी बात ये था कि इनके पुत्र राजा थे या बलि महाराज राजा बन गए, तो उनको तो इतनी असर थी, भाई हमारा पुत्र हो चाहे हमारी बहन का, तो चाहे जो भी उसकी उसका पुत्र हो, तो कोई फर्क इनको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनमें इतना प्रेम भी था। तो फिर भी इतने ऊंचे स्तर पर जाकर के आदमी को और ऐसी आसक्ति आ जाती है कभी कभी, जो उसको दुखी होती है। कह रहे थे शास्त्रों में लिखा था, बोल रहे थे कि 7-10 दिन से वो खाना कुछ खा ही नहीं रही है। और वो ऋषि कच्चा किसी का एक ध्यान से उठ के आए, देखा तो बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी।
ये कश्यप जी ने लिखा है, देखो ने भगवान की माया कितनी प्रबल है कि मोह यहाँ भी रहता है। तो वैसे भगवान की माता है आदिति, ऐसा कोई सामान्य नहीं है। भगवान की माता है वामन देव की, इसको मोह भी नहीं मानना चाहिए। एक दृष्टि से भगवान को प्रकट करने के लिए आदिति माध्यम बनी है, भगवान के प्रकट की माध्यम है। जैसे हम भागवत में पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हुआ भगवान के बछड़े चुराए, लेकिन वो जो मोह है वो जो ब्रह्मा जी का मोह है वो भौतिक मोह नहीं है। इसको कहते हैं कि संसार के लोगों को भगवान की महामाया मोह में डालती है और भगवान के भक्तों को योग माया मोह में डालती है, भगवान की लीला के गठन के लिए। नहीं तो यशोदा और रोहिणी पूतना के सुंदर रूप को देख के मोहित क्यों होती? तो उनको मोहित नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए ब्रह्मा को तो भगवान ने वचन दिया है कि आप कभी माया से मोहित नहीं होंगे, आपकी वाणी सदा सत्य होगी। फिर वो मोह, जिसका मतलब ब्रह्मा जी का मोह जो था वो भगवान की लीला के गठन के लिए था। तो ये योग माया का मोह है, मोह माया, संसार के लिए महामाया, भक्तों के लिए योग माया। जो लीला शक्ति है वो उनको मोह में डाल दे, वो भगवान को भी मोह में डालती। भगवान भी मोह में पड़ते हैं योग माया के कारण, लीला के कारण वो अपने आप को भूल जाते हैं। डायरेक्टर खुद है ड्रामे के भगवान, लेकिन जब एक्टिंग करते हैं तो वो भी भूल जाते हैं। तो वही कुछ घटन करने वाला, लेकिन खुद भूल जाते हैं। वो नहीं भूलेंगे तो लीला का, लीला प्रस्तुत तो नहीं हो पाएगी। तो ये लीला शक्ति का कार्य। आदित्य और कश्यप जो भगवान का माता पिता है, उनको मोह संसार का नहीं कहा जाएगा। देखा जाए तो वो योग माया ने ऐसी परिस्थिति में डाला है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा का ये एक साधन बताया है कि ऐसी स्थिति में भगवान का शरण लेना चाहिए। उन्होंने मार्गदर्शन हमारा किया है, ऐसा समझना चाहिए।
अरे प्रभु का क्लियर कर दिया, अब तक हम ये सुनते थे कि भगवान जिसको बहुत चाहते हैं उसको सब कुछ ले लेते हैं। आपने सुधार दिया, जो सही भक्ति करता है उसको दे भी देते हैं।
अरे भाई पक्का, पक्के को देते हैं, कच्चे का लेते हैं।
पक्का करता है,
इसलिए पक्का बन जाओ। विशेष नहीं, वहाँ दोनों बातें ये लिखी हुई है। वहाँ तो हमने कहा प्रभुपाद जी को दे दिया, हमने उधर उदाहरण दिया। अभी आपके ये राधे श्याम के देखो, इतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए योग बना दिया, क्योंकि उसका अपना कोई इच्छा नहीं था। देखा कि भगवान की सेवा में लगा, इतना बड़ा मंदिर बना दिया पूना में। तो भगवान देना चाहते हैं, जो पक्का है उसको देते हैं और कच्चा है उसका ले लेते हैं। वहाँ तात्पर्य ऐसा ही है, तो पक्का बनेंगे तो कोई कमी नहीं, लेकिन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। आधा कच्चा आधा पक्का है, वो लटका रहेगा। वो लटका रहेगा। जी कोई भी स्थिति में वो भक्ति से उठ सकता है। तीनों गुणों से उठने का रास्ता एक भक्ति है। उसके लिए सन्यासी है या गृहस्थी है, इसलिए कोई कपड़ा है या कोई आश्रम उसके लिए बाध्य नहीं है। जितने महाजन है उसमें आधे महाजन तो गृहस्थी हैं, आधे महाजन गृहस्थी हैं। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, लेकिन ये सारा संसार ही ऐसे समझता है कि हम ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये मूर्खता है, इसको छोड़ना चाहिए। असल में ये मूर्खता है कि हम कर रहे हैं, भगवान ने हमको इतनी बुद्धि दिए करवा रहा है, अपना उसको श्रेय नहीं लो, भगवान को श्रेय देते रहो तो कोई समस्या नहीं। हम करते हैं ये हमारी मूर्खता है। असल में करता हम, मूढ़ा करता हम इति मन्यते, मूर्ख है वो, समझता है मैं करता हूं। भगवान के भक्ति करने वालों में और सामान्य व्यक्ति में यही तो अंतर है। सारा संसार इसी चक्कर में है कि मैं ही चलाता हूं दुनिया को, दुनिया मेरे अधीन है, मैं चलाता हूं, ऐसे चलेगा, चाहे घर हो चाहे दुकान हो। लेकिन भगवान का है, हमारे माध्यम से चला रहा है, चला भगवान रहा है, ऐसे समझने से हमारा समस्या का समाधान हो जाएगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।